क्या खास चिंताएं जताई गई हैं इस सत्र में, या आगे के लिए किस तरह का रास्ता तैयार किया जा रहा है?
14th वाला सेशन जो स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस का, इसमें विशेषतः अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है विश्व भर में, और इसमें जो अपांगता वैक्या लोग और विकलांग लोग जो है उसको बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, वो समस्या झेल रहे हैं। और इसमें कैसे मानवीय सहायता प्रदान कर सकते हैं, विकलांग लोग के कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, स्टेट पार्टी के रूप में प्रत्येक देश अपने नागरिक जो विकलांग लोग है उसको कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एक सवाल है। और दूसरा, यहाँ की मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हमारे इंटरनेशनल कानून है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बोलते हैं हम, फिर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून है जो जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ बोलते हैं, इसमें कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है। और इसको कैसे अपने देश में कार्यान्वयन करें और कैसे अपने राष्ट्रीय कानून को इस तरीके से इम्बेड करें, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ कोविड के सिचुएशन में कैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और पोस्ट कोविड सिचुएशन में भी उसको उनके शिक्षा, उनके रोजगारी प्रवर्धन के लिए, और फिर महिला और बालिकाएं जो अपांग और विकलांग है उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम कैसे फर्दर कानून बनाए।
एक खास जो फोकस है, ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वो इस बारे में किया जा रहा है कि COVID-19 महामारी के समय में विकलांग जन है, उनके लिए खासी मुश्किलें पेश आ रही हैं। वो किस तरह की मुश्किलें हैं जो चिंता का कारण बनी है?
पहले तो विकलांग जन को इसमें यथेष्ट मात्रा में जानकारी नहीं मिले कि जो डेफ पीपल होते हैं उनको सूचनाएं एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं मिले, फिर ब्लाइंड लोगों को भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं मिले, और जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हम बोलते हैं बौद्धिक अपांगता उसको भी नहीं मिले। इसलिए सबसे पहले तो वो महासंधि के आर्टिकल 21 के जरिए हमें हमारा राइट्स है कि सूचना हम एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिले, वो नहीं मिले। दूसरा ये हुआ कि क्वारंटाइन भी तैयार हो गया और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार हो गया, बट दे आर नॉट एक्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि द डेवलपिंग इन द मोस्टली इन द डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट आर नॉट मच मोर अवेयर कैसे वो विकलांग जन उसमें अफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो आइसोलेशन वार्ड भी अच्छा नहीं बनाया, एक्सेसिबल नहीं बनाया। फिर दूसरा, इसके बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ लॉकडाउन के कारण, इसमें वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वो भी एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास यथेष्ट मात्रा में डिवाइस भी नहीं है और उसके पास सफिशियंट एजुकेशनल मटेरियल भी ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है, वो एजुकेशन से भी डिप्राइव हो गए। फिर और एक समस्या ये हुआ कि लॉकडाउन के बाद जो दैनिक रोजगारी करके अपनी जान अपने गुजारा करते हैं विकलांग जन, उनका रोजगारी गुम गया, और टेम्पोररी रोजगारी गुमने से उनका खाद्य राइट्स टू फूड भी गुम गया। उसके लिए बहुत सारा मानवीय सहायता की आवश्यकता थी मगर ये सहायता उनके तरफ नहीं पहुंचा। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन तैयार हुआ है, इन वैक्सीन तैयार होने से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को मिला है, सिक्योरिटी पर्सन्स को मिला है, और बहुत ज्यादा रिस्क में हुए विकलांग जन के प्रायोरिटी में नहीं रखा गया है, इसलिए उन्होंने वैक्सीन भी नहीं मिली, उनको वैक्सीन भी नहीं मिला है।
COVID-19 से थोड़ा पीछे लौटते हैं। आप अभी न्यूयॉर्क में सत्र में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन कब आपने इस क्षेत्र में जो आप एक सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, वो आपने कब शुरू किए?
जब मैंने मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया उस समय मेरे एक्सीडेंट से बोथ आई गुम गया, मैं दृष्टिहीन हो गया, when I got to this blindness, then I gradually started getting out of my life in these circumstances. और मैंने ये समझा कि अगर मैं दृष्टिहीन हो गया तो मेरा अब एक काम है कि मैं पूरा विकलांग जन के राइट्स के लिए उनके सपोर्ट के लिए काम करूं। जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मैं ऐसे प्रयोग करूं जैसे वो लोग को मैं थोड़ी से भी मदद कर सकूं। मैं इस फील्ड में 1995 से लगा हुआ हूं और मैं शुरू में दृष्टिबीन के फील्ड में आ गया। मैंने इंडिया में बहुत सारा मेरा कांटेक्ट है, साउथ इंडिया में है, मैंने अपने कंप्यूटर कोर्स कोयंबटूर में किया है, मैंने डेजी सिस्टम हम बोलते हैं वो मैंने दिल्ली में ले लिया है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एंड मेरा सो मेनी फ्रेंड्स है इंडिया पर जो हमें कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जब ये सब नॉलेज मैंने जनरेट किया और मैं जापान भी गया वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, उसके बाद मैं फील्ड में आ गया। और मैं पहले तो दृष्टिविहीन और ब्लाइंड लोग के साथ काम करता था, मगर उसके बाद इन 2003 आई स्टार्टेड वर्क इन द क्रॉस डिसेबिलिटी। अभी मैं यूनाइटेड नेशंस के स्टेक होल्डर्स ग्रुप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, इसका भी डिसेबिलिटी स्टेक होल्डर्स ग्रुप का एशिया फोकल पर्सन के रूप में मैं रहकर काम कर रहा हूँ।
आपने अभी बताया कि आप 95 से सक्रिय हुए थे और तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो संधि जो कन्वेंशन थी वो 2006 में आई, उसको लगभग डेढ़ दशक हो चुका। पिछले 15 साल में इस संधि के आने के बाद से कितना कुछ स्थिति हालात बेहतर हुए हैं विकलांग जन के लिए, जब ज्यादा जागरूकता है, ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, आगे के रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा और निपटना होगा?
अगर हम देखें तो 15 साल पहले वो विकलांग जन के लिए जो भी चैरिटेबल प्रस्पेक्टिव से देखते थे, अगर विकलांग जन देखें तो वो उसके बोलते हैं वो पोर बिचरा बोलते थे। नाउ सब लोग अगर विकलांग जन के देखें तो ह्यूमन राइट्स के लेंस से देखते हैं। उसका ह्यूमन राइट्स है, उसका राइट्स टू लाइफ है, उसका राइट्स टू मोबिलिटी है, उसका राइट्स टू एक्सेसिबिलिटी है, उसका राइट्स टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इवन उसका सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलाप में भी उनका सहभागी होने का होने की बात है। इसके साथ जो गैप था स्टैटिस्टिक्स में, अभी वॉशिंगटन ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस डेवलप हुआ है यूनाइटेड नेशंस से, सो इसका इम्प्लीमेंटेशन करके वो महासंधि वो सीआरपीडी के आर्टिकल 31 के जरिए हम स्टैटिस्टिक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा जनरेट कर रहे हैं ग्लोबली सब देश में। इसके साथ हम ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं कि अपने देश के जो डेवलपमेंट प्लान है उस प्लान में असेसमेंट करके, नीड बेस्ड असेसमेंट करके वो विकलांग जन के आवश्यकता को वहाँ संबोधन कर रहे हैं हर एक गवर्नमेंट, एंड दैट इज फॉलोड बाय द कमिटमेंट टुवर्ड्स द सीआरपीडी। सो इफ वी कंपेयर 15 साल से आज, सो ह्यूमन राइट्स प्रोस्पेक्टिव से वो विकलांग जन को देख रहे हैं सभी, और इसका समाज में इंक्लूजन भी अब संभव हो रहा है। पहले देखते ही लोग दूसरी तरफ मुड़ जाते थे, मगर अभी देखें तो उनका वो अंकमाल करना जाते हैं। शिक्षा में हम देखें तो स्कूल में इनरोलमेंट रेट अभी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो उसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। सो अभी तो इस सीआरपीडी रेटिफाई होने के बाद डिसेबिलिटी को देखने की जो सोच है उसमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छी तरह से सुधार हुआ है। अभी ह्यूमन राइट्स प्रोसीडिंग देख रहे हैं और डिसेबिलिटी को क्रॉस कटिंग इशू बोल करके डेवलपमेंट में मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स है। एंड स्टिल जैसे आपने कहा कि देर आर सम एक्शन पॉइंट्स एंड द मेजर्स वी हैव टू टेक, कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है हर एक स्टेट पार्टी को इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, अपने राष्ट्र में अपना लोकल कानून बना करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, और लोकल कानून के जरिए ग्रास रूट्स के जो विकलांग जन है उनके पास पहुंचना है। और फिर हम देख रहे हैं कि डिजास्टर में जो विकलांग जन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्शन करने के लिए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान भी बनाना है। फिर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन में हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से विकलांग जन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, इस सब इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए डेवलपमेंट में विकलांग जन को मेनस्ट्रीमिंग करना है। इसके लिए हर एक राष्ट्र ने और रीजनल नेटवर्क ने पीरियडिक प्लान बनाना है। उस पीरियडिक प्लान से जिस राष्ट्र में लाइक ग्लोबल साउथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी विकलांग जन के उनके अनुभव को एक्सचेंज करके एक देश से दूसरे देश को सिखाना है और विकलांग जन को डेवलपमेंट में मेनस्ट्रीमिंग कराना है, और हम इंक्लूसिव सोसाइटी एंड द इक्विटेबल सोसाइटी बना सकते हैं।